ओम शिव 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 शिव। भगवान की दिव्य आत्म विभूति पवित्र इस सागर के तट पर श्रावण के पवित्र महीने में देवादिदेव महादेव भगवान श्री बाबुलनाथ जी के पावन सानिध्य में अनेक महापुरुषों के शुभागमन से, उनके शुभाशीर्वचनों से, उनके ब्रह्म चिंतन से अत्यंत पवित्र इस प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के सत्संग प्रांगण में विगत कुछ दिनों से हम सब साधक वृंद आद्य जगद्गुरु भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा विरचित धन्याष्टकम का आश्रय लेकर के अपने जीवन को कैसे धन्य बनाएं, कैसे मैं कृतकृत्य हो जाऊं, कैसे मेरा मानव जन्म सफल हो जाए, कहां और कैसे मेरी प्रत्येक समस्या का समाधान हो जाए और जीवन सर्वदा आनंद से भर जाए, इसका एक अनुसंधान हम सब साधक लोग मिलकर के कर रहे हैं। पीछे दो दिनों से प्रथम श्लोक में हम लोगों ने ये मनन किया ज्ञान उसी वस्तु का नाम है जो हमारे इंद्रियों को शांत कर दें, इंद्रियों में जो एक आग लगी है और चाहिए और चाहिए और चाहिए हुआ नहीं, इस आग को परिसमाप्त कर दे, उस वस्तु का नाम ज्ञान है। वो तो पारसमणि है, जीवन का ध्येय, जीवन का उद्देश्य, जीवन का उपास्य, उपनिषदों का जो सुनिश्चित अर्थ है, ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व है, वही जीवन में गेय है। उसी को उपलब्ध करने से, उसी को प्राप्त करने से जीवन कृतकृत्य होगा, धन्य होगा। जन्म मरण के इस कुचक्र का अंत होगा और हमारा अपना जो आनंद स्वरूप है वो प्रकट होगा। इस ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने का जिसके जीवन में संकल्प हो गया है, जिसका दृढ़ निश्चय हो गया है कि मैं तो पैदा ही इसीलिए हुआ हूं कि इस तत्व को उपलब्ध करूं, बाकी सब सेकेंडरी चीजें हैं, मुख्य कर्तव्य मेरे जीवन का ध्येय आत्मा उपलब्धि है, ऐसा जिन महापुरुषों का निश्चय हो गया वे धन्य हैं। ते धन्या भुवि परमार्थ निश्चितेहा। हम कभी कभी अपने आप को बड़ा कोसते हैं, अपने आप से बड़ी शिकायतें करते हैं, करनी भी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि हम निरंतर सत्संग सुनने के लिए प्रयत्नशील हैं, सत्संग में जाते हैं, संतों का आश्रय ग्रहण करते हैं, संतों का संग ग्रहण करते हैं, परंतु जब अपने अंदर झांक करके देखते हैं तो काम भी वैसा ही पड़ा है, क्रोध भी वैसा ही पड़ा है, लोभ भी वैसा ही पड़ा है। तो एक अपने से शिकायत हमारे भीतर पैदा होती है कि मैंने क्या किया और मैं ये क्या कर रहा हूं। ये शिकायत तो अच्छी बात है, परंतु इससे साधक को निराश नहीं होना चाहिए। साधक को ढाढ़स बधाते हुए, धैर्य बधाते हुए भगवान श्री कृष्ण गीता के नवम अध्याय के एक परिसमाप्ति पर जाकर के एक बात बोलते हैं। बड़ी कीमती चीज बताते साधकों के लिए। मुझे लग रहा है जो गीता के नित्य स्वाध्यायी है उनके दिमाग में वो श्लोक गूंज रहा होगा। कौन सा? ना, वो तो नौवें में नहीं है, वहां अठारहवें में है। मैं नौवें अध्याय की बात कर रहा हूं। अपि चेत् सुदुराचार भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि स। इसी बात को बताने के लिए श्लोक को उठाया, सम्यक व्यवसितो हि स। कंप्लेंस होती है, शिकायत होती है, करनी चाहिए। भगवान क्या कह रहे हैं? कहा कि दुराचारी की तो बात छोड़ दीजिए, अपि चेत सुदुराचार। दुराचारी के आगे एक विशेषण लगाया, सु, सम्यक, अच्छा दुराचार, माने नंबर वन गुंडा। अपि चेत सुदुराचार, और फिर पलट करके कहते साधु रेव समन्तव्य। उसको तो साधु मानना ही चाहिए। कहा कि महाराज, नंबर एक गुंडे को साधु कैसे माने? कहा कि अब जो गुंडा था वो मर गया, अब क्या हो गया? वो साधु हो गया। कहा कि एक ही जन्म में एक व्यक्ति दो कैसे हो सकता, तो अभी जिंदा है। कहा कि आदमी का निर्णय उसके संकल्प से होता है, आदमी के जीवन का निश्चय उसकी धारणा क्या है, उसकी भावना क्या है, उसकी मान्यता क्या है, उसके आधार पर उसकी कीमत होती। कभी गुंडा था वो, परंतु अब साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही स। उसने सम्यक निश्चय कर लिया है, उसने सम्यक निर्णय कर लिया है, उसका फाइनल डिसीजन हो चुका है, जीवन में परमात्मा के अलावा और कोई प्राप्तव्य नहीं है। ते धन्या भूवि, भगवान भाष्यकार भगवान कृष्ण के ही स्वभावों को दूसरा शब्द दे रहे हैं। भगवान कृष्ण वहां बता रहे साधु रेव स मंतव्य, और भगवान भाष्यकार कह रहे ते धन्या, वे लोग धन्य हैं भैया। कौन? परमार्थ निश्चिते हा, जिन्होंने ये निश्चय कर लिया है, जीवन परमार्थ करने के लिए मिला है, जीवन आत्म तत्व का आविष्कार करने के लिए मिला है, जीवन जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाने के लिए मिला है। ऐसा यदि निर्णय नहीं कर पाए, यदि नहीं हुआ, तो शेषास्तु भ्रम निलये परिभ्रमन्ति, बाकी जो है इस भ्रम रूपी ये जो भूल भुलैया है संसार की, ये केवल एक की भूल भुलैया नहीं है भैया, ये तो लंबी परंपरा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनि पुनि जननी जठरे शयनम, लंबी यात्रा है ना, जैसे लॉन्ग जर्नी, लॉन्गर देन लॉन्ग। इसलिए ये निश्चय करना चाहिए साधक को कि जीवन में प्राप्तव्य क्या है, कर्तव्य क्या है। ये प्रथम श्लोक ही असल में इस पूरे स्तोत्र की आत्मा है। यहां बहुत कुछ संक्षेप में आचार्य ने बोल दिया, पूरा सिद्धांत ही बोल दिया वेदांत का। कोई भी विद्या जब होती है, जैसे मेडिकल साइंस है, चिकित्सा शास्त्र है, उसके चार व्यूह होते हैं, माने चार मुख्य चैप्टर होते हैं, चार उसके मुख्य काम होते हैं, चार दिशा में वो काम करता है। क्या क्या काम है? रोग क्या है ये पता लगाना, प्रथम काम। और रोग का कारण क्या है ये पता लगाना, दूसरा काम। तीसरा काम आरोग्य क्या है इसको डिफाइन करना, स्वास्थ्य क्या है। और चौथा काम है स्वास्थ्य प्राप्त करने का और स्वस्थ रहने का साधन क्या है। इन चार चीजों में ये योग शास्त्र जो चिकित्सा शास्त्र पूरा होता है, इसको बोलते हैं चतुर्व्यूह। इसी प्रकार अध्यात्म जो शास्त्र है वो भी चतुर्व्यूह होता है, उसका भी काम चार चीजें बताना होता है। किधर से भी शुरू कर लीजिए, हम जिधर से खड़े हैं वहां से ही पहले प्राय शास्त्र शुरू करता है। तो शास्त्र का प्रथम काम है ये बताना कि बंधन क्या है। अध्यात्म शास्त्र की प्रथम जिम्मेदारी क्या है? प्राणी को, जीव को, जिज्ञासु को, साधक को ये समझाना कि तुम कैसे बंधे हुए हो, बंधन क्या है। क्योंकि हम लोगों को तो बहुत बार समझ में भी नहीं आता है कि मैं बांधा हुआ हूं। कोई अकेला आदमी यदि गांव में भांग खा करके जा जाए, चला जाए और उल्टा पुल्टा व्यवहार करने लगे तो सब लोगों को पता चलता है कि व्यक्ति पागल हो गया, कुछ गड़बड़ है। और उस गांव के कुएं में यदि भांग पड़ी हो और सभी उसी कुएं का पानी पीते हो तो उस गांव में कोई किसी को पागल मानेगा? सब एक जैसे हैं, कोई किसी के ऊपर अंगुली नहीं उठाएगा। यदि शास्त्र अंगुली नहीं उठाता, यदि संत अंगुली नहीं उठाते, यदि गुरुजन अंगुली नहीं उठाते, यदि ज्ञानीजन अंगुली नहीं उठाते तो वी आर सेटिस्फाइड, हमें तो कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। क्योंकि हमने देखा कि हमारे दाएं वाले का भी जीवन ऐसा ही है, हमारे बाएं वाले का भी जीवन ऐसा ही है, हमारा पड़ोसी सामने वाला भी ऐसे ही जी रहा है, तो जीवन शायद जीने का तरीका यही होगा और जीवन ऐसे ही होता होगा। तो हमें पता भी नहीं चलता कि बंधन क्या होता है। इसलिए अध्यात्म शास्त्र का प्रथम काम होता है साधक के सामने खोल करके रख दे कि भैया तुम्हारा बंधन क्या है, तुम कैसे बंधे हुए हो। दूसरा काम है बंधन का कारण क्या है, बंधन का कारण क्या है, किस कारण से तुम बंधे हुए हो। यह अध्यात्म शास्त्र की दूसरी जिम्मेदारी है। साधक को एकदम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि मैं बंधा हूं तो आखिर किस कारण से बंधा हूं, बंधन का कारण क्या है। फिर तीसरी जिम्मेदारी है, बंधन समझ में आ गया, बंधन का कारण समझ में आ गया, अब क्या समझना चाहिए है, मुक्ति क्या है, क्या है पहले आपको समझना पड़ेगा मुक्ति
क्या है, मुक्ति क्या है, ये केवल शास्त्र ही समझा सकता है, क्योंकि अतींद्रिय पदार्थ है वो, इंद्रियों से परे की वस्तु है, इसलिए हम संसार में रह करके उसको सीख नहीं सकते। जो इंद्रियातीत अनुभूति में डूब करके आया हो, उसकी अनुभूति से परिसंपन्न होकर के आया हो, वही बता सकता है। या अपौरुषेय शास्त्र हो, वही बता सकता है। तो ये शास्त्र की तीसरी जिम्मेदारी है, ये सत्संग की तीसरी जिम्मेदारी है, ये सदगुरु की तीसरी जिम्मेदारी है, साधक को ये समझाना कि मुक्ति का स्वरूप क्या है। और फिर फाइनल स्टेज है मुक्ति का कारण, माने मुक्ति के उपाय क्या है, किन उपायों का मैं आश्रय लूं कि उससे मुझे मुक्ति मिल सकती है। ये जब चतुर्व्यूह पूरा हो जाता है तो समझो कि आपकी सत्संग पूरी हुई या कोई अध्यात्म शास्त्र पूरा हुआ। प्रथम श्लोक में भगवान भाष्यकार ने संक्षेप में हमारा ध्येय क्या है और ध्येय की साधना क्या है उसका वर्णन कर दिया। अब बंधन क्या है इसका अत्यंत सुंदर निरूपण दूसरे श्लोक में कर रहे हैं। क्या बंधन है, हम कहां पर अटके हुए हैं, किससे बंधे हुए हैं, और बंधन से निकलने का रास्ता क्या है। तो आप समझ लीजिए कि साधना का ये प्रथम स्टेप कहां रखना है हम लोगों को, क्योंकि साधना के नाम पर हम लोग बहुत उठापटक करते हैं। आपने देखा होगा कि जिम में जो जाता है ना कोई एक्सरसाइज करने के लिए, सबसे पहले वो बड़का वाला ही उठाना चाहता है जो सबसे भारी हो। उठा पाएगा कि नहीं पाएगा, वी हैव टू टेक बेबी स्टेप्स। अपने मसल्स को स्ट्रॉन्गर बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और लगे रहोगे तो एक दिन सबसे बड़ा वाला भी उठा लोगे। हम तो चाहते कि पहले दिन ही जाकर के सबसे बड़े वाला ही उठा ले, इसलिए साधना के क्षेत्र में भी जब साधक प्रवेश करता है तो चाहता है कि हमारी तो पहले ही दिन निर्विकल्प समाधि ही लग जाए। 8-10 दिन प्रैक्टिस करता है, कुछ हाथ लगता नहीं है, हाथ झाड़ करके जय सिया राम, वर्क कंप्लीट डन, तो निराशा हाथ लगती है, उदासी हाथ लगती है। इसलिए हमारे लिए, साधकों के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम राइट स्टेप लें, ठीक जगह से शुरू करें, ठीक तरीके से शुरू करें, और धीरे 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 अपने लक्ष्य तक पहुंचे। दो चीज साधना के क्षेत्र में हमेशा ख्याल रखना चाहिए, देयर इज नो शॉर्टकट एंड देयर इज नो हरी। दो चीज के चक्कर में पड़ गए तो अच्छे साधक नहीं बन सकते, अपने जीवन के लक्ष्य को उपलब्ध नहीं कर सकते। शॉर्टकट में चक्कर में है, मुझे तो जल्दी चाहिए, तो किसी के भी पल्ले पड़ सकते हैं आप। यहां बहुत दुकानें सजी हुई है भैया, और बहुत जल्दी में है यदि, तो बहुत जल्दी निराश होकर के फिर लौट जाएंगे, वापिस जहां थे वहीं पहुंच जाएंगे। इसलिए धीरे धीरे धीरे, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवित दृढ़ भूमि, साधना कैसे करनी है? दीर्घकाल, निरंतर और अत्यंत आदर और सत्कार के साथ, तभी साधना फलीभूत होती है, तभी साधना सफल होती है और तभी व्यक्ति को अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाती है। तो आइए, आचार्य शंकर हमें द्वितीय श्लोक में ये सिखा रहे हैं हमारी प्रॉब्लम्स क्या है और उसका रास्ता किधर से निकलता है, प्रथम स्टेप हमको साधना के स्तर पर क्या करना है। एक बार उच्चारण कर दें श्लोक का, फिर इसके अर्थ का अनुसंधान प्रारंभ करें।
आदो विजेत्य विषयान् मदमोहराग, द्वेषादिशत्रुगणमाहृतयोगराज्या, ज्ञात्वा मृतं समनुभूय परात्मविद्या, कांता सुखा वन गृहे विचरन्ति धन्या।
आदौ विजित्य विषयान्, प्रथम स्टेप है विषयाशक्ति के ऊपर साधक को विजय प्राप्त करना पड़ेगा। ये एबीसीडी है बस भैया, यहीं से शुरुआत है, यहां से शुरू करना पड़ेगा और इसको छोड़कर के बाकी यदि बहुत कुछ करना शुरू किया तो जो पहली कक्षा पास करके ना आए, कितना भी टैलेंटेड हो और उसके साथ में परिश्रम करने वाला उसका शिक्षक भी कितना भी परिश्रमी क्यों हो, परंतु वो सीधे मैट्रिक पास नहीं कर सकता। उसको स्टेप्स बाय स्टेप्स ही जाना होगा। आदौ विजित्य विषयान्, प्रथम स्टेप में विषयाशक्ति के ऊपर, अपनी इंद्रियों के ऊपर व्यक्ति को एक नियमन, एक कंट्रोल, एक अनुशासन करना ही पड़ेगा। इसके बिना अध्यात्म जगत की तो बहुत दूर की बात है भैया, सुख से संसार में रह नहीं सकता। जो अत्यंत उश्रृंखल है, जो अत्यंत अनुशासनहीन है, जिसके जीवन में कोई डिसिप्लिन नहीं है, जो मन में आया सो करता है, जो मन में आया सो खाता है, जो मन में आए सो देखता है, जहां इच्छा हो सो जाता है, वो व्यक्ति तो शांत और स्वस्थ जीवन नहीं जी सकता। साधक होना तो बहुत दूर की बात रह गई। डिसिप्लिन ही वो फाउंडेशन है जहां पर आप जीवन का सुंदर महल निर्माण कर सकते हो। आपका फाउंडेशन ही यदि कमजोर है तब तो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, और फाउंडेशन यदि है ही नहीं तब तो फिर कल्पना भी नहीं कर सकते कि वहां कभी कोई बिल्डिंग खड़ी होगी, कल्पना भी नहीं कर सकते। आदौ विदित्य विषयान्, बड़ी समस्या है मानव आत्मा के साथ। आप थोड़ा सा गहराई से यदि विचार करेंगे तो रोना आएगा। ये जो बोल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, व्यवहार कर रहा है, इसका जो असली स्वरूप है, ये इस जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। पूरा जगत इस सत्ता की शक्ति से, इस अंतरात्मा की जो असली स्वरूप है उससे ये पूरा जगत विलसित हो रहा है। इतना ऐश्वर्यशाली, इतना महिमामय इस जीव का असली स्वरूप है। वो जीव भिखारी बना हुआ, कोई थोड़ा प्यार दे दे उसको, कोई थोड़ा सत्कार दे दे उसको, कोई थोड़ा आदर दे दे उसको, कोई एक बार उसके लिए ताली बजा दे, इतना भिखारी, इतना दीन, इतना रंक। आंखों में आंसू आते हैं जब अपनी ही दुर्दशा देखते हैं। शास्त्र बता रहा है यह सच्चित आनंद स्वरूप है, यह आनंद का आगार है, यह आनंद का खजाना है। इसके आनंद का एक बिंदु लेकर के इंद्रादि देवता आनंदित हो रहे हैं। ऐसी परम आनंद स्वरूप सत्ता, ऐसा अजर अमर अविनाशी तत्व
हर दरवाजे पर भिखारी बन करके दस्तक दे रहा है। थोड़ा प्यार दे दो, थोड़ा सम्मान दे दो, थोड़ा धन दे दो, और उसने अपना अस्तित्व ही खो दिया।
यदि आप रिकॉग्नाइज करते हैं तब तक मुझे लगता है कि मैं जिंदा हूं, और आपने यदि मुझे रिजेक्ट कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया,
तो ऐसा लगने लगता है कि अब जीने में कोई सार नहीं है। सुसाइड इज द ओनली वे।
इतना दीन हीन भिखारी रंक इसको किसने बनाया?
विषयों की आसक्ति ने, विषयों की आसक्ति ने।
कोई कारण नहीं है कि इसकी आंखों में आंसू हो। यदि इसके दिल में विषयों के प्रति आसक्ति नहीं हो तो ये भैया सहंसा है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जा को कछु न चाहिए वे सहंके सहा। ये जो चाह है, ये जो इच्छा है, ये जो आसक्ति है, इसी ने तो दीन हीन गरीब और भिखारी बना करके रखा। इसी ने तो इतनी दुर्दशा करके रखी है।
इसका यदि थोड़ा भी हम गहराई से विश्लेषण करें तो हमारा पागलपन धीरे धीरे खुल करके सामने आता है। अच्छा, ये जो हम लोगों की इनरमोस्ट डिमांड है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इसको हम कभी ठीक ढंग से विश्लेषण नहीं करते कि मैं क्यों चाहता हूं, मुझे क्या जरूरत है।
एक व्यक्ति को जीने के लिए हकीकत में कितनी जरूरत है? एक व्यक्ति एक दिन में कितना अनाज खा सकता है? ज्यादा से ज्यादा कितना? एक किलो यदि मान ले, सलता नहीं है, संभव नहीं है, एक किलो मान ले, फिर भी एक महीने में कितना खाएगा? एक साल में
365 दिन। 365 किलो अनाज का कितना दाम होता है? हाईएस्ट रेट पकड़े तो कितना होता है? 30,000 रुपया।
30 किलो का 30,000 रुपया? नहीं, 365 किलो का।
अच्छा,
30,000, 12 महीना का हिसाब हो रहा है। और आदमी को शरीर ढकने के लिए 12 महीना में ज्यादा से ज्यादा, जिससे उसकी इज्जत की रक्षा हो जाए, कितने ड्रेस कपड़ों की जरूरत है?
4 ड्रेस मान लिया।
कितनी कीमत?
10,000 मान लिया।
कितना हुआ?
40,000 रुपया।
और सोने के लिए उसको 3.5 हाथ, एक अच्छी छत चाहिए जो बारिश से, पानी से, धूप से उसकी रक्षा कर सके। इसके बिना तो जी नहीं सकता, इतनी तो जरूरत है। तो आदमी को भगवान ने बुद्धि दी है, स्वस्थ शरीर दिया है, हाथ दिया है, पैर दिया है, क्या वो 12 महीने में इतना नहीं कर सकता? सब कर सकते हैं, संभव है। फिर भी आज हजारों हजारों लोग भूखे क्यों सो रहे हैं? आज हजारों हजारों लोगों के पास शरीर ढकने के लिए कपड़ा क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ तथाकथित शिक्षितों ने, कुछ तथाकथित समर्थों ने, कुछ तथाकथित बुद्धिकों ने अपनी वासनाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी लालसाओं को इतना बढ़ा दिया, एक ड्रेस से नहीं चलता है, डेली एक ड्रेस नहीं चाहिए तो 365 ड्रेस चाहिए। 3.5 हाथ जगह से सोने से संतुष्टि नहीं है, इसलिए 5 तला 7 तला 10 तला 27 फ्लोर फॉर वन पर्सन और फॉर वन फैमिली। ये जो हमारी आकांक्षाएं हैं, ये जो हमारी अभिलाषाएं हैं, ये जो हमारी लालसाएं हैं, इसको यदि हम बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए तो कोई एंड है क्या? जो 10, 20, 50 हो या तब शत हजारन लाख मगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पताल को राज मिले पुनी तृष्णा आदित यदि आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सट तेरी तो भूख कबू न भगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सट तेरी तो भूख कबू न भगेगी। गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। ये आर्ट ऑफ लिविंग है, ये जीने की कला है, ये जीने का सूत्र है, इसे व्यक्ति को किसी न किसी पॉइंट पर जाकर के सीखना पड़ेगा। आग को कभी घी से बुझाया नहीं जा सकता। मैं इस बात का पक्षपात नहीं हूं कि आप कमाई बंद कर दीजिए, मैं इस बात का भी पक्षपाती नहीं हूं कि जो सामग्री है सब ले जा करके बाहर फेंक दीजिए, मैं इस बात का भी पक्षपाती नहीं हूं कि जो 5 तला बिल्डिंग है गिरा करके झोपड़ी बना दीजिए। मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं, जो प्रारब्ध में लिखा है, जो पुरुषार्थ से प्राप्त हो गया है, अरे एक बार तो लेकर के भगवान को थैंक्स बोल दो कि थैंक्स गॉड, आपने बहुत दिया, मेरा जीवन चल सकता है, बस हो गया। एक संतोष आ गया, एक तृप्ति आ गई, एक परितुष्टि आ गई, आपको लगेगा कि जीवन किसी न किसी स्तर पर पूरा हो गया। हमने आज तक जो प्राप्त किया है उसके प्रति हमारे मन में भगवान के प्रति तनिक भी थैंक्सफुल क्यों नहीं आता है? क्योंकि हमारी इच्छाएं इतनी बढ़ गई है, हमारी डिमांड्स इतनी बढ़ गई है, हमको लगता है कि हमें को तो 100% चाहिए था, भगवान तो अभी 10 ही दे पाए, 90 हमारा डिपेंड पड़ा हुआ है, क्यों थैंक्स बोले? साधक को जीवन के एक स्तर पर जाकर के शांति से यदि जीना है, आनंद से यदि जीना है, प्रेम से यदि जीना है, रसमय जीवन यदि जीना है, तो विजित्य विषयान, विषयों की आसक्ति को जीतना पड़ेगा, लगाम लगना पड़ेगा, कंट्रोल कराना पड़ेगा, अपने को एक डिसिप्लिन में उतारना पड़ेगा, अपने मन के ऊपर, अपनी इंद्रियों के ऊपर, अपनी आसक्तियों के ऊपर, अपनी वासनाओं के ऊपर एक कंट्रोल करना पड़ेगा। ये साधना की पहली सीढ़ी है, ये ABCD है, इतना करना ही पड़ेगा भैया, इसके बिना काम चलने वाला, और यदि चल जाता तो हम कब का अपना काम पूरा करके निपट चुके होते, आज या नहीं होते। अनंत काल से जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, कारण क्या है? ये जो बेसिक काम है, ये जो ABCD, इसको कभी किया ही नहीं हमने।
इसलिए सबसे प्रथम जो साधना का सूत्र है आचरण शुद्धि, आर विहार की शुद्धि, आचार हीनम न पुनन्ति वेदा। जो आचरण से हीन है भैया साक्षात वेद भगवान भी उसका कल्याण नहीं कर सकते। फर्स्ट जो स्टेप है साधक के लिए अपनी इंद्रियों को, अपने विषयों की आसक्ति को कंट्रोल करना, उसको वश में करना। और ये जो आसक्ति हमारा कैसा विनाश करती है इसका दिग्दर्शन भगवान ने गीता जी के दूसरे अध्याय में कराया। कहां पर है? श्लोक क्या है? वाह, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो विजायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंसात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात जय सियाराम। बुद्धिनाशात जय सियाराम। बुद्धि यदि नाश हो गई तो जय सियाराम, प्रणश्यति बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो ये जो नाश की यात्रा है, ये जो विनाश की यात्रा है, ये जो सत्य नाश की यात्रा है, इसका आरंभ कहां से होता है? ध्यायतो विषयान, विषयों का ध्यान करने से चित्त में बीज पड़ता है और उस बीज का जब फल सामने आता है तो आत्म विनाश होता है। ध्यायतो विषयान पुंस, आप लोगों ने बहुत बार उसका मनन किया होगा, प्रत्येक दिन साधक को ये मनन करते रहना चाहिए। मेरा जीवन किधर जा रहा है, मैं किधर जा रहा हूं? आदौ विजित्य विषयान, इस इंद्रियों को भैया कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो बड़ा उत्पात होगा, बड़ा उत्पात होगा। हम प्रकृति में थोड़ी सी यदि आंख खोल करके देखें, बड़ी बड़ी शक्तिशाली सत्ताएं अपने स्वतंत्रता से जीतने वाले प्राणी, प्रकृति का उन्मुक्त आनंद लेने वाली जीव सत्ताएं कैसे इंद्रिय के जाल में फंस करके अपने जीवन का विनाश करते हैं। हाथी जैसा शक्तिशाली प्राणी गजराज है, एक इंद्रिय के अधीन होकर के जिंदगी भर बोझ ढोता है। हाथी में बल कम है क्या? दीनता की, परिधीनता की, पराधीनता की और बंधन की जिंदगी जीता है। हिरण जैसा स्पीड से दौड़ने वाला प्राणी एक बधिक के बंधन में पड़ करके प्राणों से हाथ धोता है, केवल एकमात्र श्रवण इंद्रिय के अधीन होकर के। हिरण दौड़ जाए तो बधिक, तो क्या बधिक की सात पीढ़ी भी उसके पीछे दौड़ करके पकड़ नहीं सकती। प्रकृति ने इतनी शक्ति दी है, इतना सामर्थ्य दिया है हिरण के भीतर, नहीं कर पाता है। क्यों? वो शब्द की तन्मयता के साथ बंध गया। असल में वो फंदा जो है ना डोरी वाला, वो बंधन नहीं है, वो फंदा नहीं है, वो शब्द ही असली फंदा है जो उसको बांध करके धीरे 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 उधर खींचता है। निर्मल
तालाब के भीतर मछली जहां साए तैर करके अपना जीवन जी सकती है। जीवा के लालच में, स्वाद के लालच में अपने प्राणों से हाथ धोती है। उन्मुक्त आकाश में उड़ने वाला पतंग रूप के प्रति लालायित होकर के प्राण विसर्जित करने को बाध्य होता है। प्रकृति ने सबको जीने के लिए पर्याप्त सामर्थ्य दिया है। हाथी बलशाली है, हिरण दौड़ने में तेज है, मछली जल में उन्मुक्त जीवन जीने के लिए स्वतंत्र है, पतंग के लिए अनंत आकाश पड़ा हुआ है, उसके जीवन के ऊपर कोई संकट नहीं था यदि इंद्रिय की लालसा ने उसको न खींचा होता। ये जीव अजर अमर अविनाशी सच्चित आनंद स्वरूप है, फिर भी दर दर का भिखारी बन करके भटक रहा है। कोई प्रेम दे दे, कोई सत्कार दे दे, कोई सम्मान दे दे, कोई आदर दे दे, इसको भिखारी किसने बनाया? इंद्रियों की लालसा ने, इंद्रियों के राग ने, इंद्रियों की आसक्ति ने। और जो व्यक्ति इस आसक्ति के बंधन को काट सकता है, जो साधक इस आसक्ति के बंधन को काट करके ऊपर उठ गया, संसार की किसी भी शक्ति में, किसी भी पदार्थ में वो सामर्थ्य नहीं है वो उसको दीनहीन बना सके। वो तो शहंशाही बन करके जिएगा। इस इंद्रियों की आसक्ति ने, इस भोगों की लालसा ने और एक एक इंद्रिय ने एक एक प्राणी का जीवन हरण कर लिया, तो पांचों जहां प्रबल हो और फिर ऊपर से हमारा सपोर्ट हो उनको, तो क्या हो सकता है? इसलिए जब साधना की चर्चा करनी होती है, जब साधक को सावधान करना होता है, तो गुरु लोग यहां से ही शुरू करते हैं। ये विनाश का बीज है, ये विनाश का पथ है, ये विनाश का मूल है। इसके ऊपर एक अनुशासन, इसके ऊपर एक कंट्रोल, इसके ऊपर एक लगाम साधक को लगानी पड़ेगी। आदौ विजित्य विषयान, ये आचरण शुद्धि की बात है। जिनका आचरण शुद्ध नहीं हुआ है उनके लिए साधक बनना जीवन में बहुत कठिन है। ये प्रथम स्टेज हुआ। दूसरा स्टेज है मद मोह राग द्वेष आदि शत्रु गणान विजित्य। हमारे जो असली शत्रु है कौन कौन है? भगवान भाष्यकार ने दो चारों के नाम गिनाए हैं, बाकी उनकी लंबी सौड़ी फैमिली है। मद, को अन्यो असि सदृशो मया, मेरे जैसा इस संसार में और कौन है? ये जो एक अभिमान का जो भाव है, जो अहम का भाव है, ठीक है, तुम ही राजा हो, तुम ही सर्वश्रेष्ठ हो, तुम ही जगत के कर्ता धर्ता हो, हमने हाथ जोड़ करके मान लिया, परंतु जरा शरीर को बाहर निकाल करके, शरीर के साथ नहीं। को अन्य असी सदृशो मया, यदि आप शरीर को, मन को, बुद्धि को, प्राणों को अपने स्वरूप से बाहर निकाल करके बोलते हैं तो हम आपको प्रणाम करते हैं, क्योंकि फिर इनके बिना तो आप ब्रह्म तत्व ही हैं और ब्रह्म के सदृश तो और कोई है ही, ठीक है। पर तो हम क्या करते हैं? केवल ब्रह्म को बाहर निकालते हैं, इंद्रियों को, मन को, शरीर को, प्राण को केवल अहम बुद्धि करके बोलते हैं को अन्य असी सदृशो। अरे भैया सब तो तुम्हारे ही जैसे हैं, फिर कुअन्योसि सदृशु मया तुम कैसे बोल सकते हो? तुम्हारा शरीर जिस पृथ्वी से बना हुआ है, सभी का शरीर उसी पृथ्वी से बना हुआ है। तुम्हारे शरीर में जो पानी है, सभी के शरीर में वही पानी है। तुम्हारे शरीर में जैसी नाड़ियों की संरचना है, सभी के शरीर में उसी प्रकार की नाड़ियों की संरचना है। तो तुम्हारे अकेले के भीतर श्रेष्ठता और बाकी सबके भीतर निकृष्टता कहां से आ गई भैया? मद, मोह, मोह शब्द का अर्थ होता है वैचित्य, उल्टी समझ, अनित्य को नित्य मानना, अपवित्र को पवित्र मानना, परायों को, बोलने में कष्ट लगता है, परायों को अपना बोलना, ये जो सारी उल्टी समझ है इसका नाम मोह है। राग माने आसक्ति, द्वेष माने विद्वेष, जो क्रोध का मूल है। उसके बाद में भगवान ने बता दिया, शंकराचार्य जी ने लंबी फैमिली है आदि, इन सबको विजित्य, किनको विजित्य? शत्रुगणम, इन शत्रुओं के समुदाय को हम लोग समझते हैं कि हमारे बाहर बड़े बड़े शत्रु हैं, बड़े बड़े कंपिटेटर हैं, बड़ी बड़ी बाधाएं खड़ी करते हैं। होंगे, बाहर भी शत्रु होंगे, बाहर भी कंपिटेटर होंगे, परंतु भगवान भाष्यकार अपने भाष्य में एक बड़ी सुंदर चीज लिखते हैं, बाहर जितने शत्रु है उन शत्रुओं के जो असली जन्मदाता है वो हमारे दिल के भीतर बैठे हुए हैं। जिसके दिल में काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, अहंकार नहीं है, अविद्या नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत कठिन है कि बाहर कोई आप शत्रु खोज करके निकाल दो। हमारे जो बाहर शत्रु है, काम के कारण, क्रोध के कारण, लोभ के कारण, मोह के कारण, अहंकार के कारण, हमने बाहर इतने सारे शत्रुओं को खड़ा करके रखा है। चीन के एक बड़े विचारक हुए, ताओ धर्म के अधिष्ठाता हुए, उन्होंने एक बार घोषणा की कि चाइना का जो सबसे मजबूत पहलवान है नंबर एक, उससे मैं कुश्ती करूंगा। ऐसे ही तो साधक कृष्णकाय, जोर से हवा का झोंका लग जाए तो चलते चलते गिर जाए, और घोषणा कर दी कि मैं जो सबसे, इस देश का जो सबसे प्रबल मल्ल योद्धा है उससे मैं मल्ल युद्ध करूंगा। सब लोग चिंतित हो गए, बैठे बैठे बाबा जी का दिमाग कैसे चकरा गया। अच्छा धर्म प्रचार कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे, साधना कर रहे थे, लोगों ने मनाया, उनके शिष्यों ने मनाया, वहां यहां तक कि वहां के राजा ने भी आकर के मनाया कि गुरु जी आप मत लफड़ा करिए, ये मल्ला मल्ली झगड़ा झगड़ी ये पहलवान लोगों का काम है, आप कैसे करेंगे? उनका कि ना मैं तो करूंगा। दिन निश्चित हो गया, जगह निश्चित हो गई, पहलवान आकर के मैदान में खड़ा हो गया, और वो महापुरुष भी मैदान में पहुंच गया और पहुंच करके जाकर के उसके सामने सो गया। उसने कहा कि हो गया मल्ल, उसने कहा कि उठ। बोले मैं यहां उठने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो सोने के लिए आया हूं। पहलवान अपना हाथ झाड़ करके चला गया। उसके बाद में उन्होंने जो स्पीच दी, उन्होंने जो भाषण दिया, उन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य मल करना नहीं था, मेरा उद्देश्य केवल इतना था, जब आप किसी के सामने खड़े हो गए, आपका अहंकार, आपका काम, आपका क्रोध, आपका लोभ किसी से यदि टकराएगा तभी घर्षण पैदा होगा। आप में काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, अहंकार नहीं है, बड़ा मुश्किल होगा कि कोई आपका शत्रु खोज करके निकाल दे संसार से। उन्होंने एक उदाहरण दिया, जब आप खाली आसमान में तलवार घुमाओगे तलवार किसी से नहीं टकराएगी, और दीवार के ऊपर तलवार मारोगे तो टन की आवाज होगी और तलवार टूटेगी। हमारा अपना यदि जीवन पवित्र हो, हमारे अपने जीवन में यदि क्षमा हो, दया हो, करुणा हो, प्यार हो, पत्थर भी पिघल जाते हैं। आप चित्रकूट जाएंगे तो कभी देखना, भगवान राम जी ने जहां पर रात्रि विश्राम किया था उस शिला पर आज भी निशान पड़ा हुआ है कि एक आदमी यहां पर सोया था। उनके त्याग से, उनके प्रेम से, उनकी करुणा से, उनकी दया से पत्थर की शिला पिघल गई, राम को कष्ट ना हो, फूलों की सेज से भी कोमल बन गई। सब कुछ बदल जाता है यदि हमारे भीतर पवित्रता हो, हमारे भीतर शांति हो, हमारे भीतर दया हो, हमारे भीतर करुणा हो, सब बदल जाते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े ऋषि महर्षि महापुरुषों के सानिध्य में पशु पक्षी जो जन्मजात वैर रखते हैं अपना वैर त्याग कर लेते हैं। शेर और गाय ऋषियों के आश्रम में एक साथ रहती थी, सांप और सुअर ऋषियों के आश्रम में एक साथ खेलते थे। किसका प्रभाव था? वो जो अहिंसा उस साधक के दिल में जो प्रतिष्ठित हो गई थी, उसका प्रभाव पूरे प्रकृति को प्रभावित करता है। ये जो हमारे घर में अशांति है, ये जो हमारे समाज में अशांति है, ये जो हमारे इंस्टीट्यूशन में अशांति है, हम समझते हैं कि सामने वाला दोषी है, सामने वाले की गलती है, हम कभी मुड़ करके अपने भीतर नहीं देखते कि इधर भी तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, इधर भी तो कुछ डिस्टर्बेंस हो सकती है, इधर भी तो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। साधक वो होता है जो निरंतर अपना अवलोकन करता है, अपनी कमियों के साथ निरंतर काम करता है। हम कोई सीधे साधक और साधु बनकर के पैदा नहीं हुए हैं, हम काम के साथ, क्रोध के साथ, लोभ के साथ, मोह के साथ, अहंकार के साथ पैदा हुए हैं। हमें यहाँ प्रतिपल प्रतिक्षण हर मोमेंट अपने को डिवाइन बनाते रहना पड़ेगा, अपने को घिसते रहना पड़ेगा, अपना परिशोधन करते रहना पड़ेगा, तब एक दिन जाते 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 साधक ब्रह्म स्वरूप बनता है। मद मोह राग द्वेषादि शत्रु गणान विजित्य आहित योग राज्याहा। फिर ये जो योग का राज्य है, शांति का राज्य है, वो हमें प्राप्त होगा। इसके लिए हमारे लिए जरूरी है हम सावधान हो, सजग हो, और जीवन को इस पवित्र पथ पर चलाने के लिए संकल्पित हो। मैं परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूं, हम सब साधकों को इतनी शक्ति दें, इतना सामर्थ्य दें, इतनी ऊर्जा दें कि साधना के इस पवित्र पर हम चल पाए। आज अत्यंत पवित्र दिन है, श्रावणी पूर्णिमा है, सौभाग्य पूर्णिमा है, राखी पूर्णिमा है। इस राखी पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैं सब साधकों के मंगल की कामना करता हूं। भगवान सब साधकों की रक्षा करे, सदगुरु सब साधकों की रक्षा करे, और रक्षा यही है कि हमको साधना के पथ पर आगे बढ़ाएं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।